pensato di lotta o partiamo. A me si è stato a quello di medaglia, ma non è che si è stato. E il nostro amico è andato a fare il lavoro a Madras. O voi, il dispiace. हमारे पास आया कि आपसे एक मशवरा करना तो हमने आपसे कमरे बुलाया उसके यहां तो उसने कहा कि मैं इतना दूर चिल्ला लगा के आया हूं अलीगढ़ से मथुरा कितनी दूर है पहले मैं तीन दिन जाकर सहादा दिन लगाया तो बहुत जी लगता था नमाज पढ़ने में और अमल में जुड़ने में सब चीज में जी लगता था अब फिर मैंने उतनी दूर चिल्ला लगा के आया खर्चा भी आया और पूरा चिल्ला लगा के आया था لیکن اندر سے میری طبیعت بالکل جیسے بجھ گئی ہو نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا نہ اجتماع میں جانے کو جی چاہتا نہ تسبیح پڑھنے کو جی چاہتا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا حالانکہ چلہ لگا کے تو اور آدمی کو چارج ہو جانا چاہیے تو میں نے یہ پوچھے اس سے پوچھا یہ بتاؤ امیر صاحب سے لڑائی تو نہیں کرتے تھے امیر سے تو ہنسنے لگا کہنے لگا پورے قلعے میں امیر صاحب کی اصلاح میں لگا رہا امیر صاحب کی اصلاح میں نے کہا دیکھو شیطان نے تمہیں ٹکٹ کر کر کھلا دیا تھا مجھے مان تم اپنی اصلاح کی نیت سے گئے تھے یا امیر صاحب کی اصلاح کی نیت سے گئے امیر صاحب بھولے والے سیدھے سادے تھے اور کہ میں ان کو بہت بہت کرتا رہا ایسے کریے ایسے کریے تو ہم نے کہا کہ اب دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو اور جاجول سے معافی مانگو تو دل کی کیفیت بدل جائے تو جماعت میں جا کے امیر کو ستائے نہیں بلکہ ان کو راحت پہنچائیں کہ منشا سے سلم کے پاس ہمارے ساتھ ایک صاحب نکلے پہلوان اور چودھری بڑے زمیندار قانون کے پہلوان کے ہوتے ہیں کشتی لڑتے قانون ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی لیٹر روز دودھ پیتے تھے دیہات میں چلے بھی نکلے ہمارے ساتھ اور وہاں خالی پیدل چلنا اور مسور کی دال اور روٹی پکا کے کھانا دور رہتے اس سے ہم کہتے ہیں دودھ تو ملتا ہے گاؤں میں لے لیا کرو دودھ آپ پی لیا کرو آپ کہنا ہم اس وقت سب لوگ دال روٹی کھائیں ہم دودھ پیے گئے اور بہت اچھا لوگ پودار لگایا اور ہر وقت تیار رہتے ملاقات کرنے کے تو اللہ نے اس قلعے میں ان کو ایسا قبول کیا کہ اپنی تحصیل کے وہ ذمہ دار ہو اپنے بچے کو حفظ کرایا اور آج تک لگے ہوئے تھے پورا اللہ نے قبول کر لیا قلعہ صحیح لگ گیا تو امیر کی منشا پہچان کر کے کام کیا امیر کو بنا فرمانی نہ کر اس طریقے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو مسجد میں قیام ہوگا ہمارا تو مسجد کے آداب کی رعایت ہو مسجد اللہ کا گھر ہے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں مسجد میں جائیں تو سنت کی رعایت داخل ہو پانچ سنتیں داخلے کی ہیں پانچ نکلنے کی اسی ہیں بسم اللہ پڑھ کے جائیں دعا پڑھیں دائنے قدم سے داخل ہوں درود شریف پڑھیں افطار کی نیت کریں اور وضو کر کے اور دو رکعت مکروہ وقت نہ ہو تو تحیت المسجد کی نماز پڑھیں اب سامان قرینے سے اپنا رکھتے ہیں اور اس پر چادر وغیرہ ڈھانک دیں صفائی کا خیال رکھتے ہیں مسجد میں زور سے بات نہ کریں اور اسی طریقے سے دنیا کی باتیں نہ کریں مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اس طریقے سے اس کا لحاظ رکھے اپنا ورنہ نیکی برباد گناہ لا جائے اگر آداب کی رعایت کریں اور پاکی کی حالت میں رہیں مسجد میں ناپاکی ناپاک حالت میں مسجد میں نہ رہیں اور مسجد کے انتظام میں دخل نہ دیں مسجد بجلی بغیر اجازت کے نہ استعمال کریں
जाकर ये सब पद के लोग मोबाइल अपना चार्ज करना शुरू कर देते हैं मस्जिद का, वो तो अमान पंखे चला देते हैं। अगर इंतजामिया की तरफ से इजाजत हो तब इस्तेमाल करना, वो भी एहतियात के साथ। ये नहीं गर्मी के मौसम में एक एक पंखे के नीचे सब ले रहे हैं, इसराफ होगा उनके साथ। एक साथ जमा सफाई का ख्याल रखें, सफाई करने में बल्कि सफाई कर दें मस्जिद में, लेकिन फिर कुछ हो गया। पानी का भी इस्तेमाल बेदरेर न खर्च करें, पानी लिमिटेड होता है। अगर अब 15 आदमी की जमात गई और माल हुआ तो टोटी खोल के एकदम वजू किया, इसलिए कहते हैं लोटे में वजू करें तो कम पानी इस्तेमाल हो, इसराफ नहीं होगा। एक मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा इसराफ करने से वजू में क्या नुकसान होगा, तो कहा नमाज का खुशू खत्म हो जाएगा इसराफ करने से, उतने पानी एक लोटे में वजू हो जाएगा। अब टोटी खोल गए एक बाल्टी पूरा वजू कर जाए, इसका ख्याल रखें अपना। तो मस्जिद के आदाब की रियायत के साथ मस्जिद में हमारा ख्याल हो। मस्जिद के बाहर अगर कोई जगह हो तो वहां सामान वगैरह रखते हैं, बेहतर है खाना वहां खाए। पकाना खाना पकाना हो तो ऐसी जगह पकाएं जिससे जो गंदगी ना हो, इसका लिहाज। अब जमात में जाके मेरे भाई और दोस्तों कहते हैं कि चार काम ज्यादा करने होते, ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा इनमें लगेगा। ये नुस्खा है हमारा, जमात में जाए तो हम ये सोच के जाएं कि हम सब रूहानी मरीज हैं, हमारी रूह बीमार है, अल्लाह के रास्ते में उसके इलाज के लिए जा रहे हैं। आप बताओ मरीज आपस में लड़ाई करते हैं भाई, अस्पताल में जाओ तो बड़े हजारों मरीज रहते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, सीबीआई कॉलेज है, बड़ा अस्पताल है, कई हजार मरीज आते हैं, लेकिन कभी हमने मरीजों को लड़ते नहीं देखा, मरीज आपस में लड़ रहे और न एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए। अब एक आदमी के पेट में दर्द है तो वो अपना पेट पकड़े में जाकर अल्ट्रासाउंड कराता, डॉक्टर ने लिख दिया। किसी को खांसी आ रही है वो एक्सरे करा रहा, किसी की आंख की तकलीफ है तो जाके आंख वाले डॉक्टर में लाइन में लगा, है ना। सब अपने मशगूल है, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी की हिम्मत नहीं करता, करता कुछ। हर आदमी अपने मर्ज और दुआ करता अल्लाह हमें कृपा दे दे, बल्कि मरीजों में हमदर्दी होती है, सिंपैथी होती है, एक दूसरे की बाल मरीज मदद भी कर देते हैं, गरीब मरीज। तो जमात में अगर ये सोच करके जाए कि भैया हम तो मरीज हैं, यकीन की खराबी, यकीन की कमजोरी, गलत यकीन, ये मर्ज है, गलत यकीन के साथ मर जाएगा, हमें चकले जाएंगे तो चला जाएगा, इतना बड़ा रोग है। और जिस्मानी बीमारियों से तो गुनाह माफ होते, और बाल बीमारियों में शहादत का दर्जा मिलता, लेकिन अगर रूह बीमार होकर मर गई तब तो वो तो आदमी अजाब में गिरफ्तार हो जाए। सबसे बड़ा रोग जो है ना यकीन की खराबी, अगर कुफ्र के साथ शिर्क करके निफाक के साथ मर गया अब हमेशा जो है वो जहन्नम में अल्लाह महफूज। उसका इलाज क्या है, कलमा है, कलमे पर मेहनत करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पहला ईमान की मेहनत, ये राय है। दूसरे देखो आजकल चारों तरफ गुनाहों के दरिया बह रहे हैं, गुनाहों की आंधियां चल रही हैं, गुनाह से बचना मुश्किल है, गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा। हर गुनाह जो है वो सांप के बच्चे की तरह है, सांप डसने वाला गुनाह, या आपका अंगारा है। अब सांप चाहे छोटा हो बड़ा हो डस लेगा तो आदमी मर जाएगा, वेरीला सांप है तो गुनाहों से मैं मुलव्वी होना ये एक बीमारी है ना। उसका इलाज नमाज में रखा अल्लाह ने, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज अगर बन जाएगी तो सारे गुनाह छट जाएंगे, सारे मुकरा जिंदगी से निकल जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, दूसरे जमात में जाके नमाज पर मेहनत करते हैं। नमाज नमाज अगर बन गई, नमाज को बना के सीख के फजाइल के शौक के साथ मसाइल को सीख करके अल्लाह के ध्यान के साथ खुशू खुजू के साथ और अल्लाह के लिए और ऐसे पढ़ी जाएगी तो नमाज दूरानी बन के दुआ देती हुई जाएगी। और बगैर सीखे पढ़ा न रुकू सही न सजदा सही न खुशू खुजू है न मसाइल मालूम है न किरात सही है तो पुराने कपड़े की तरह जो है मुंह को मार दी जाएगी, बदुआ देती हुई जाएगी कि तुमने खराब कर दिया नमाज। इसलिए जमात में जाके अपनी ईमान पर मेहनत करनी, यकीन ठीक हो, अल्लाह की बड़ाई बयान करे, खूब तौहीद की रिसालत की आखिरत की खूब मुजाकरे करें, खूब दावत दे। दावत देने में हम समझते हैं कि तकरीर करना। देखो अब तो गूंगे लोगों की जमात निकलती है, गूंगे, अब गूंगे कौन सी दावत देंगे, इशारों से अल्लाह की बड़ाई बयान और जमातें निकालते हैं। इस तरीके तो एक तो दावत देना है ईमान की और उससे यकीन ये बीमारी दूर होगी। दूसरे नमाज नमाज की दावत देना, नमाज को खुद सीखना, उसको बनाना, फजाइल के हलके में बैठ कर शौक पैदा करना और जिक्र करके खुशू पैदा करना, खुशू पैदा करना और मसाइल को जानने वालों से सीखना। इतना कुरान पढ़ना जरूरी है जिससे नमाज सही हो जाएगी, तजवीद के साथ मखारिज के सीखना जरूरी है और यकीन के साथ कि नमाज पढ़ के हर सब अल्लाह ने नमाज में सारे मसाइल का हल रखा है, रोजी की बरकत इसमें अल्लाह ने रखी है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने कब्र के आजाब से हिफाजत रखी है। तो बहरहाल नमाज को बनाना, देखो तो गुनाह छट जाएगी। ऐसे देखो गफलत और जहालत एक बीमारी है, गुनाह इसी से होता है, ये रोग है। तो हमें इल्म सीखना है, जिक्र करना सीखना है ताकि ये बीमारी दूर हो। इसलिए तीसरा नंबर बहुत अहम है हमारे यहां, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं या परिंदे के दो पर होते हैं, इस पर मेहनत करना। और अखलाक और मामलात अगर ठीक होंगे तो अमल जो है देखिए महफूज रहेंगे, दूसरों के हुकूक अदा करेंगे। लोग अखलाक की खराबी, मामलात की खराबी बड़ा रोग है, बीमारी है, सारी नेकियां ट्रांसफर हो जाएंगी दूसरों को। तो उसको जो है ना चौथा नंबर इसलिए रखा गया है जमा निकल सकते वो सीखना, हिम्मत करना। और पांचवें जो है इखलास, रियाकारी दिखावे के लिए महारोग है। बड़े बड़े अमल करके आदमी अगर ये बीमारी लग गई तो जहन्नम में डाल दिया जाए। शहादत के बावजूद, सखावत के बावजूद, ताली मुताल्लुक के बावजूद अगर ये बीमारी लग गई रिया की दिखावे की तो सबसे पहले इनका हिसाब होगा इसको जानना। ये रोग है, इसका इलाज क्या जमात से बताते हैं, तस्ही है नीयत, खुदा से नीयत। और जान और माल अल्लाह की दी हुई अमानत है, जान माल हमारा, हम मालिक नहीं है, इस गलत पानी से निकले, इसकी तरकीब सही हो जाए, इसके लिए छठा नंबर है जमात में निकलना लगता है। ताकि जान को अल्लाह की अमानत समझे, माल को अल्लाह की अमानत समझे और उसकी तरतीब बनाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अज्मईन का देखें जान माल कहाँ लगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके निकाह में आई, उम्मुल मोमिनीन, कितनी मालदार और तजारत की बड़ी, सारा माल अल्लाह के पास। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े ताजिर थे लेकिन सारा माल अल्लाह के रास्ते में, देखो गुलाम आजाद करने में, दीन के तकाजों पर, गज़वे तबूक में मालूम हुआ जो कुछ था वो सब कदम मुबारक था। और टाट या कंबल पहनते थे वो, और वो कांटे से अपना अल्लाह का सलाम आया इस तरीके से। तो अपनी जान और माल की तरतीब सही हो जाए, इसीलिए निकलना है महानंबर है इसको कहा जाता है ना। तो जमात में निकल करके पहली चीज जो है ना, इन चीजों को दावत में ज्यादा वक्त लगाना है, छह नंबरों की है ना, छह नंबरों की दूसरों में दावत देनी है, उसको मश करनी है, तो इसी से पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। ये छह नंबर जो है पूरा दीन नहीं है, लेकिन अगर ये छह नंबर अगर जमात में निकल कर आ जाए हमारी जिंदगी, तो पूरे दिन पर धीरे धीरे आ जाएगा पूरे दिन पर। असलन इसको, इन सिफात को जमात में निकल कर अपने पैदा करना है। अगर देखो छह नंबर अगर आ गए जिंदगी में जमात में निकल के, तो जो अमल हम करेंगे वो जानदार अमल होगा और वो अमल महफूज रहेगा और वो अमल इंशाअल्लाह मकबूल भी होगा। अगर ईमान की कैफियत के साथ अमल करेंगे तो अमल में जान पैदा होगा, जानदार बनेगा। और अगर चौथा नंबर की रियायत करेंगे तो अमल महफूज रहेगा, और पांचवा नंबर होगा तो मकबूल है ना। तो छह नंबर बहुत जामे है, बहुत जामे, कोई भी इख्तलाफ नहीं है। इसीलिए इन्हीं छह नंबरों के दायरे में रहें, इसे बाहर नहीं निकले जवान। छह नंबर कोई पूछे तो यही बताएंगे हम ही छह नंबर सीखने, अपना ईमान बनाने निकले, नमाज बनाने निकले, इल्म सीखने निकले, जिक्र करने सीखने। एक जमात अलीगढ़ की, वो बाद लोगों ने शिकायत कर दी तो उसको जेल में डाल दिया, वो पहले की बात। तो बाद में उनका इंटरव्यू लिया, बड़े बोर्ड बैठा उसमें जेलर कलेक्टर सब लोग, तो उसमें उन्होंने एक एक कर को बुलाते थे, पूछते थे और उनको वापस नहीं जाने देते थे कि वो बताए नहीं क्या पूछ। तो हर एक ने जाके छह नंबर बताए, हर आदमी ने छह नंबर। एक देहाती आदमी तीन दिन के लिए साथ हो गया था, उसको जो था इस बहुत डांटा स्पीडिंग, ये बताएगा सही तो पढ़े लिखे लोग हैं अपना सब आपस में, उससे बताओ जमात में क्या होता। तो वो रोने लगा जब डांटा, उसने कहा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, जमात में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र, वही तीसरा रंग। अब वो लोग बड़ा मुतमइन हो गए कि भाई ये लोग तो बड़े अच्छे भले लोग हैं, और उनसे माजरत की उन्होंने कि भाई हमको गलत इतला मिली, अब आपको तीन दिन और रुकना पड़ेगा, और आप जो खाना खाना उसका मीनू बनाइए, आपको हम लोग खाना खिलाएंगे। उन्होंने कहा भाई खाने वाले ने आप इतना हमें मौका दे दो कि जो कैदी हैं उनमें हम गश्त करके उनको नमाज पढ़ाएं। हाँ उसकी सूच वो जेल माल हुआ, वो पूरा वहां अब गश्त करके माल हुआ, नमाज पढ़ा रहे हैं, तालीम कर रहे हैं, और फिर बड़े इज्जत के साथ उनको छोड़ मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार में। ये बात तो छह नंबरों के दायरे में अगर रहेंगे तो इसमें बड़ी हिफाजत, समझे भाई। तो पहला काम जो हमें करना है ना, एक तो ये छह नंबर सामने रहे इसी को सीखना, और इसका रोज अपना मुआसपा करें। छह नंबर पर तकरीर करना नहीं, छह नंबर जिंदगी में आए, जिंदगी में। और दूसरी चीज जो है ना, तो दावत में ज्यादा वक्त लगाना, दावत में जो है गश्त होगा, ढाई घंटे की मुलाकातें होंगी, तालीमी गश्त होगा और तश्कीली गश्त होगा, वसूली गश्त होगा, दावत में ज्यादा से ज्यादा जो है वक्त लगाए, दावत मुकदम। इससे जो है अपने अंदर भी कुवत आएगी दावत देने, जिस चीज की दावत देता है सबसे पहले उसका दिल उस पर असर देता है उसका। इसे हर साथी दावत दे, शैतान ये आदमी को वक्त सिखाता है कि भाई पहले हम सीख लें फिर दावत देना, ऐसा या तो सीखते हुए दावत देना, दावत देते हुए सीखना। इस तरीके से दूसरे कहते हैं तालीम और तालुम में, दूसरा अमल जो उसमें कुरान सीखना, इतना कुरान जिससे हमारी आंसू सूरह फातिहा है, आखिर की दस सूरतें हैं, यानी उसको जो है ना, देखो अरबी जबान जो है ना नाजुक है, माने बदल जाते हैं, स्वाद की जगह सीन पढ़ा जो है, शीन पढ़ा, फे है, था है, किस्सा है, किस्वा है, किस्सा है ना। तो अब इसको सीखना मस्त करके 40 दिन में अगर थोड़ी कोशिश करेंगे सीख जाएंगे। तब नमाज हमारी नमाज में कुरान जैसे पढ़ना जरूरी है, उसका सीखना जरूरी है। तो कुरान के हल्के हो, कम से कम इतना सीखना जरूरी है। न पढ़ा हो तो नूरानी कायदा लेकर उसकी मश्क करें, रोज नमाज में हल्के होंगे तालीम, और 3-4 घंटे तालीम होनी चाहिए 24 घंटे में। और कोई काम तो है नहीं हमें, 24 घंटे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं कि 4 घंटे जब तालीम हो। हमारे यहां जमात आई गोदरा से हमारी मस्जिद में, तो हमने 18-19 सब 7 आलिम उसमें और हाफिज और सब कहने लगे कि क्या हम लोग 4 घंटे तालीम करते हैं, 2.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे दोपहर, और दिन में सोते नहीं हम, खाली थोड़ी देर कैंडूला करते हैं। कहने लगे सुबह में तो हम खूब 1.5-2 घंटे मुलाकात करते हैं जमात की तालीम, फिर 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक कितने घंटे हुए, 2.5 घंटे जम के तालीम करते हैं। उसमें कुरान के हल्के, फजाइल का इल्म, 6 नंबरों का मुजाकरा, ये सब। फिर ठीक 12 बजे जो है खाना खा लेते हैं, और 2 बजे नमाज है तो अपना 1 घंटा कैलूला कर लेते, कैलूला सुन्नत है, और जोहर के बाद तारुफ वगैरह करके फिर तालीम असर करते ले रहे हैं, उसमें फजाइल सदकात और ये सब चीजें 4 घंटे। तो ऐसी जमात थी माशाल्लाह कि कई जमातें उन्होंने निकाली, 3 दिन की, 3 किले की। और हमारे यहाँ एक हॉस्टल में है, जब आखिरी दिन था उनका 4 महीने का, मुझे बुलाया कि आप थोड़ी सी बात कर लीजिए। हम गए, हमने बात की तो वो हॉस्टल वाले मोहरसन, अब गए अलीगढ़ में मोहरसन कोर्ट पे थे, अभी नई मस्जिद बनी हुई थी, हॉस्टल के लड़के कह रहे थे ऐसी जमात तो आई नहीं, ये तहज्जुद में उठ करके ऐसा रोते थे कि पूरा हॉस्टल गूंजता, और बहुत असर हुआ उसका। तो ऐसे वक्त अगर 4 महीने में ऐसा मशगूल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है इसी मस्जिद की जमात, ऐसा वक्त हुआ आज लोग ऐसी जमात को याद करते हैं, ऐसा वक्त हुआ। तो दूसरा जो है ना, देखो तालीम और ताल्लुम इसमें जो है सीखने सिखाने में, इंफिरादी तौर से भी दुआएं सीखें अपना, तो सेवाई तालीम होगी इंफिरादी तौर से, खाने की दुआ, बच्चे में दाखिले की दुआ, सोने की दुआ, ये सब सीखना सिखाना होगा। और तीसरे चीज जो है ना जिसमें वक्त लगाना है वो नमाज। हमारे यहां कोई 4 महीने लगा के निकलता तो कारगुजारी होती, तो एक बुजुर्ग थे नाजिर साहब, अभी इंतकाल हुआ, बहुत अल्लाह ने काम दिया, तो वो 2 सवाल पूछते, तकबीर उला मेरी नहीं मिली, तकबीर उला कितनी छूटी, 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ ले तो 2 परवाह नहीं मिले, एक जहन्नम से छुटकारे का और नेफाक से भरी। तो जमात पे तो आसान, अभी तकबीर उला 40 दिन, तो ये पूछते थे तहजीब कितनी छुट्टी, तकबीर उला कितनी छुट्टी। तो नमाज का इंतमाम करें देखो, तकबीर उला का, और अपना कुरान की तिलावत है, तस्बीहात है सुबह शाम की, इसको तीसरा कलमा दरू शरीफ इस्तिग़फ़ार, इसको इंतमाम से पढ़ें और ध्यान जमा करके, और उसी तरीके से अपना जो है ना तहज्जुद है, इशराक है, इज्तिमाई अमल, तहज्जुद में तो कोई इज्तिमाई अमल होता है, तहज्जुद पढ़े जल्दी सोए है ना। तो नमाज में, जिक्र में, तिलावत में और दुआ मांगने में, इसमें वक्त जिस जमात में रोने धोने वाले ज्यादा होते हैं, और जिस तो उस जमात में बहुत अच्छे आपस में जोड़ नूरानियत होती है, वो नमाज वो जमात अपना अक्स छोड़ करके आती है बहुत दिन तक, हाँ ये जमात देखो सोने वाले, जैसे मैंने बताया ना कि हॉस्टल वाले लड़के कह रहे हैं कि ऐसी जमात आई नहीं, तहज्जुद में सब 4 बजे उठ जाए, 4 बजे 5 बजे इस तरीके से। और चौथे खिदमत, خدمت بھی ایک عمل ہے. جماعت میں کوئی باورچی تو ساتھ نہیں جائے گا بھائی, ہے نا. اپنا جان, اپنا مال, اپنا کھانا, اپنا پکانا. تو ہر ساتھی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہمیں خادم بن کے چلنا, خدمت سیکھنا. خدمت سے خدا ملتا ہے, خدمت سے آدمی قیمتی بن جاتا ہے, قیمتی بن جاتا ہے. جو خدمت کرتا ہے اللہ اس کو مخدوم بنا دیتا ہے. خدمت سے تواضع آتی ہے, خدمت سے کبر ٹوٹتا ہے نفس کو. تو اور سب سے زیادہ سیف عمل ہے. اب آپ بتاؤ, جو خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں نا, کوئی تمام کوئی صفائی میں لگا ہوا ہے, کوئی اپنا نگرانی میں, کوئی مسافہ کرنے جاتا ہے اسے, اور جو بیان کرتا ہے تو پھر سب مسافہ کرتے ہیں. تو خدمت میں اخلاص کے بہت چانسز ہوتے ہیں, اخلاص اور نفس بہت بنتا ہے. تو جماعت میں نکل کر کے اگر خدمت کا عمل سیکھ لیا آدمی, تو بہت بڑی چیز سیکھی خادم بن کے. اس طریقے سے چاروں خلفائے راشدین دیکھو, سب خدمت کے بڑے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحتی پڑھا جاتا کچھ بھی, اندھی بڑھیا کی خدمت کر رہے, اپاہی معذور, غریب بچیوں کی بکریوں کا دودھ نکال رہے خدمت کر رہے ہیں, خلافت کے بعد بھی ایسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اب آپ دیکھو کیا راتوں کو گشت کر رہے ہیں, کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پریشان. ایک بدو کی عورت کو یعنی ولادت ہو رہی ہے, تو اپنے گھر سے لے جا رہے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ کو اس کی خدمت کے لیے. ابو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے تھے, مجھے تین چیزیں پسند ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کپڑا پر قرآن کی تلاوت. ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ مہمان کی خدمت. تو یہ چار کام زیادہ سے زیادہ کرنے جمع, اسی یہ نسخہ ہے دیکھو, دعوت دینے میں, اور دعوت کا ہے کہ ایمان کی, آخرت کی, توحید کی, رسالت کی, مختلف کی دعوت, موٹی موٹی چھ نمبروں کی. اور تعلیم و تعلق, قرآن سیکھنا چھ نمبر کو مذاکرہ, فضائل کی کتاب پڑھنا اور چھ نمبروں کا مذاکرہ, اور نماز, ذکر, تلاوت, دعا مانگنا. خوب دعا مانگے, قبول ہوتی دعا, اپنے لیے, اپنے ہدایت کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنا اور خدمت. یہ چار کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے نا. باقی دیکھو, ہمارے ضرورتیں ہیں, ہمارے ہم بشر ہیں, انسان ہیں, تو ہماری بشری ضروریات ہیں. کھانا ضرورت ہے, سونا ضرورت ہے, نہانا ضرورت ہے, بات کی ضرورت ہے, سنجے میں جانا ضرورت ہے. تو ان کو جو ہے نا سنت کے مطابق کریں, ہر کام سنت کے مطابق, تو دین بن جائے گا. کھانا سنت طریقے پر, اور سادگی ایمان کی علامت ہے. سیدھا سادہ کھانا بنا لیا ہو اور کھا لیا, تو سادہ کھانا کھائے گا تو پیسہ بھی کم خرچ ہوگا, پکانے میں بھی آسانی, اور کھانے میں بھی آسانی, اور ہضم کرنے میں بھی آسانی. ایسا سمجھو بھائی, دال چاول بنا لیا, دال چاول بنانے میں کیا مشکل ہے نا, یا آلو ڈال کے چاول میں تہری بنا لی, کیا مشکل سے کھا لیا. اور اگر گوشت مرغا ذبح کیا, بکرے کا گوشت لائے, تو مال و سارا چلنے کا پیسہ اس دن میں ختم, سیدھا سادہ کھانا ضرورت پوری ہو جائے. اور دوسروں پر لگائے ہیں, ابھی جماعت ہم کار گزاری سن رہے تھے ایک جگہ کی, تو وہ کہتے تھے ہم نے 250 لوگوں کو چار مہینے میں کھانا کھلایا, 250 لوگوں کو اپنا کھلایا, دوسروں افریقہ ملکوں میں. تو اپنا پکا کے اور دوسروں کو کھلا کر کے خوش ہو, دعوت کھا کے خوش نہ ہو. اب دعوت کسی نے کر دی تو مار مارو آپ کو خوش ہو رہے, بولے چلو پکانا نہیں پڑے, پکا کے دوسروں کے حالت میں خوش ہو. دعوت بھی قبول کر رہے ہیں اگر دیکھ کر کے, پہلے اس کی دیکھ کریں کہ بھائی آپ تو ہمارے بھائی ہو, اس میں لگ جاؤ گے تو پھر آپ کام کون کرائے گا, آنا ہم لوگ بنا دیں گے, آپ ہمارے ساتھ ملاقاتیں کراؤ. پھر بھی اصرار کرے تو اس سے تھوڑی سی بات کر کے دیکھ کے پھر دعوت قبول کریں, یہ نہیں کہ ایک دم فور ایسے جو ہے. तो इसमें जरूरतों में जो है ना अपने कम से कम वक्त लगाएं, खाने में सोने में 6 घंटे 7 घंटे की नींद पूरी कर लें। ये नहीं कि हर वक्त जमात में सोता है। एक नौजवान हमारे साथ जमात में, उसकी जनरल स्टोर की दुकान थी, तो वो जमात में मालूम हुआ कि खूब देर तक जाकर गुसल करना और फिर आकर के तालीम शुरू हो गई, आकर के तालीम में बहुत देर में बैठे और उसके बाद उठता रहे तालीम में, और मालूम हुआ जब बयान हो तो उसमें सोए। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ जमात तुम अपनी दुकान पर बैठते हो तो ऐसे उठते हो क्या? अरे डॉक्टर साहब 9 बजे मैं बैठता हूं तो 9 बजे रात तक सोता हूं। तो मैंने कहा किले में पूरे साल का कोटा पूरा करने आए और नींद का नहीं? भाई यहां भी चौकन्ना रहो, कैसे हो सकते? तो 5-6 घंटे की दिन में थोड़ा सा खजूरा कर ले और जल्दी सो जाए जल्दी। मोबाइल सबसे बड़ा आजकल ये कोई इतना बन गया है ना, देखो मोबाइल का जमात में तो बिल्कुल, अगर मोबाइल न दे जाए तो सबसे अच्छा है। मौलाना हमारे फरमाते थे खून ने हमारी जमातों का खून कर दिया, फूल खत्म हो जाए। पांच जगहों पर तो पाबंदी है कि अमीर के पास एक मोबाइल रहता है, बाकी सब जमा करा देते हैं। कोई बात हो तो वो नंबर रहता है होता है। और अगर हर वक्त वो मोबाइल देखते रहेंगे तो देर तक जागेंगे, तहज्जुद में उठना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी सोए तो तहज्जुद में आसानी होगी उठने, जल्दी वक्त की हिफाजत अपना खाने में सोने में बातचीत में। जो खामोश रहा वो निजात पा गया, खामोश रहा जो। तो इसलिए जो है ना कि बोलने में पहले तौले फिर बोले। एक फरिश्ता हर वक्त ताक पे रहता, जैसे जबान से अल्फाज निकाला अगर गलत अल्फाज निकाले तो ये रोक कर दे, लड़ाई की बोल बोले तो ये रोक कर दे, ताक पे रहता। रोजाना आदमी लिखा औसतन, एक साहब ने इस पर रिसर्च की, हर आदमी औसतन 3-3.5 घंटे बोलता है 24 घंटे, और जो लेक्चर वगैरह देते हैं वो तो ज्यादा बोलते हैं। तो रोजाना अगर जो है, और 1 मिनट में जो है ना, 1 मिनट में तकरीबन 50 लफ्ज बोलता है, तो 3 घंटे का अगर लगाएंगे तो 10,000 अल्फाज बोलता रोज। आप बताओ अगर गलत बोला तो ये फरिश्ता दिखता है। अब पूरे साल में तो कितने हो जाएंगे, सिर्फ जबान से कितने गुना हो जाएंगे। इसलिए जो है ना बातचीत बकदर जरूर है, जिक्र का आदि बनाए अपनी जबान को, जो जो जिनकी जबानें जिक्र से तरोताजा रहती हैं वो जन्नत में हंसते हुए चले जाए, हंसते हुए। तो बातचीत में एहतियात है ना, और चंद चीजों से देखो एहतियात करनी है, परहेज। जैसे कोई नुस्खा बताया जाता है ना, किसी को अगर दस्त आ गया तो दवा लिखेगा, या फिर कोई नुस्खा लिखेगा तो फिर परहेज बताएगा, दस्त आ रहे हैं दवा के साथ साथ कभी खिचड़ी खाओ, दही खाओ, केला खाओ, अनार खाओ। अब अगर दवा भी खा रहा है और कबाब खा रहा है और पाए खा रहा है, निहारी खा रहा है, तो बताओ दवा काम करेगी? तो परहेज में कहते हैं लायानी चीजों से परहेज करे, तर के लायानी, जिससे न दुनिया का फायदा हो न दीन का। और सवाल करने से परहेज करे, मखलूक से चाहना व जबान से सवाल करना तो उससे नाराज होते हैं। अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह खुश होंगे, दुआ, हमें दुआ वाला बनना, किसी से सवाल, अपनी जरूरत की हर चीज लेके जाना, अपना जान माल खर्च करना, तब बनेगा, सब बनेगा। और दूसरे ये कहते हैं कि दिल में इशराक ना आए कि कोई हमें सवारी दे दे, कोई हमें पहुंचा दे, कोई हमारा किराया दे दे, कोई हमारी दावत कर दे, इसको इशराक कहते हैं। इशराक दिल से झांकना, इसको मना, इसे बरकत नहीं होती, इसे बचना। और इशराक यानी फजूल खर्ची से बचना, फजूल खर्ची से, जहां चीज पानी का, हर चीज के इसरा, पानी के, बिजली के, खाने, हर चीज में जिस चीज में इसराफ दाखिल हो जाता है उसकी बरकत खत्म हो जाती है, इसराफ से बचना। और बगैर इजाजत किसी की चीज इस्तेमाल न करना, हम एक पहले जब जमात में निकले तो ज्यादा एक साहब की चप्पल थी वो पहन के हम चले गए सिंजे में, खेत में पहले जाते थे लोग खेतों पहले जमात, और वहां से आए तो ढूंढ मचली चप्पल की थी कौन पहन गया कौन पहन गया। हम आए तो देखे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो देखे माफ कर, हमने कहा माफ करना हमें पता नहीं था उन्होंने पहन। तो चप्पल कोई भी चीज किसी की बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करना, ये माशरत के आदाब में से है, वो सीखना है। तो इन चार चीजों से सवाल करने से, फजूल खर्ची करने से, अब जमात में अगर फजूल खर्ची करेंगे तो पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए बताए ना खाना पीना सादा सुधा होटल वगैरह से परहेज करें बाहर इस तरीके से, और तो उसमें बरकत रहेगी। और उसी तरीके से बगैर इजाजत किसी की चीज इस्तेमाल नहीं करें। और दूसरे एक चीज और करना है कि देखो, एक तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी है, सियासी पॉलिटिकल बात को नहीं करनी है, बल्कि हमें या तो जमीन के नीचे की बात करनी है, कब्र की एवं अशद कब्र में क्या होगा अशद में क्या होगा, या आसमान के ऊपर की जन्नत होगी। पहले यही लोग कहते थे कि जमात वाले या तो आसमान के ऊपर की बात करते हैं या जमीन के नीचे की, और ये हकीकत है। असल तो आखिरत की फिक्र पैदा होना जमात में, कब्र में क्या होगा, कब्र जन्नत का बाप बनेगी या जहन्नम का घड़ा बनेगा, है ना। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के सामने जब कब्र का तस्करा होता तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक कर आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल आखिरत की फिक्र, कब्र में क्या होगा और अशर में क्या होगा, जहन्नम से कैसे बचना, इसी के तस्करे में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं। और जमात में मसाइल भी इज्तिमाई तौर से नहीं उसको सीखना है, इंफिरादी तौर से मसाइल में इख्तिलाफ है इससे बचना है। और हालात हाजरा पर तबसरा न करें कि क्या हो रहा है मुल्क में अखबार या ये वो सबसे, हमें तो वही छह नंबरों के साथ आखिरत की फिक्र, कैसे हमारा ईमान बन जाए, कैसे हमारी नमाज बन जाए, कैसे हम गफलत से निकल जाएं, कैसे हम दीन का इल्म सीखें, ये फिक्र हुआ इसके लिए अमल का शौक पैदा हो। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया की फिक्र हर बुराई की कुंजी है, हदीस का मफहूम, दुनिया की मोहब्बत हर खतरा की है। आजकल देखो अक्सरियत जो है वो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो हर बुराई की कुंजी है। और चीजों का शौक नुमाइश रखती है, तो मिट्टी में आज और वजूद जा रही है, हालांकि सब मिट्टी से बनी हुई है, सब मिट्टी में मिलने वाली है, मिट्टी में मिलने वाली। तो इस काम में लग करके अल्लाह के रास्ते में निकल करके हमें आखिरत की फिक्र पैदा करनी है, और चीजों के बजाय आमाल का शौक पैदा करना है, इसलिए फजाइल को खूब सुनना, फजाइल आमाल को खूब पढ़ना सुनना, ताकि अमल का शौक पैदा हो। अमल आदमी के गले का हार होता है, गले का हार उसाथ जाएगा जो अमल चीजें से छूट जाएंगे। एक साहब ने बाराबंकी जिले में यूपी में जिला सोने के दांत लगाए थे, पहले लोग सोने का दांत लगाए मलेशिया और वगैरह से मुसलमान थे, बता रहे जब उनका इंतकाल हुआ तो दांत बैठ जाते हैं, एक लड़का गया कफन खरीदने, दूसरा एक हथौड़ी लाया उनके मुंह को मार के दांत निकाल के कोर्ट की जेल में रखे, निकालने के जाएंगे दुनिया की मोहब्बत इस तरीके से। इस मेहनत के जरिए से कह रहे हैं कि अपना जो है देखो आखिरत की फिक्र आए, आखिरत लिखा है कि जिसके अंदर आखिरत की फिक्र आ जाए सारे मुफसिद मिलकर उसको गुमराह नहीं कर सकते, इतनी बड़ी थी हर अमल का दरवाजा खुल जाएगा, फिर वो आदमी तोबा भी करेगा, खर्च भी करेगा, और किसी का हक है तो उसको भी अदा करेगा जब आखिरत की फिक्र आ जाएगी। और اللہ سے معافی بھی مانگے گا, گناہوں کو روئے گا بھی, اور عمل کا شوق, تہجد پڑھنے کا شوق, اشراق پڑھنے کا شوق, ذکر کرنے کا شوق, قرآن پڑھنے کا شوق, خدمت کرنے کا شوق, خرچ کرنے کا شوق, مہمان نوازی کا شوق, یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی جب آدمی کے اندر آتے ہیں عمل کا شوق, خدمت کا شوق. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, یہ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی اپنا محاسبہ کرے, دیکھے اگر آخرت کی فکر بڑھ رہی ہے اور عمل کا شوق بڑھ رہا ہے تو یہ اچھی علامت, اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وقت صحیح نہیں رکھ رہا ہے, وقت صحیح نہیں رکھ اس کا جو ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں نا, دیکھو کہ جماعت میں یہ کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, اس میں ضرور کے دعوت دینے میں اور سیکھنے سکھانے میں اور نماز ذکر تلاوت میں خدمت میں اس میں زیادہ وقت لگانا, سمجھ لو میکسیمم اسی سے بنے گا آدمی, کھانے پینے میں, ہونے میں, بات چیت میں وغیرہ میں, ضرورتوں میں بقدر ضرورت ہے نا, جس سے تاکہ صحت مند رہے آدمی. اور اسی طریقے سے سوال کرنے میں بچنا ہے, دایانی سے بچنا ہے, اور بولنے میں احتیاط, اور کسی یعنی کہتے اسراف سے بچنا ہے اور اسراف سے بچنا ہے, اور بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنے سے اس سے بچنا ہے, یہ پرہیز بتایا جا رہا ہے, پرہیز کرنا ہے. ایسے جو ہے سیاسی گفتگو نہیں کرنی ہے, حالات حاضرہ پر تبصرہ نہیں کرنا ہے, اجتماعی طور سے مسئلے مسائل نہیں چھیڑنے تاکہ آپس میں وہ نہ ہو, تو یہ موٹی موٹی ان کا احتیاط کرنا ہے, اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے. جس جماعت میں خوب رونے دھونے والے, ذکر کرنے والے, تلاوت کرنے والے, دعا مانگنے والے, ایسی جماعت جو ہے وہ جو ہے نا, چاہے اس میں بیان کرنے والا نہ ہو کوئی جائے, اصل 24 گھنٹے کے جو اعمال کرتا ہے اعمال, اس کا اثر پڑتا ہے دل ایسی بھی ساری جماعت. امریکہ میں ہم لوگ گئے تو وہاں ایک علاقہ ہے جہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں, مل ویلی نام, سب سے بڑی زمین ہو, وہاں بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی, مدرسہ, بڑا پارکنگ کی جگہ, یعنی جتنا بڑا آپ کا نہیں استعمال رہا ہے نا, اتنی بڑی تو مسجد, اور اس سے کئی گنا پارکنگ کی جگہ, یعنی پورا اتنا ہوگا تو پورا اسے مسجد بھی مدرسہ بھی سب. میں نے کہا اتنی قیمتی زمین کیسے مل گئی یہاں پر, تو بتایا کہ وہاں ایک پیدل جماعت چل رہی تھی, ٹینٹ والی جماعت, اور وہاں مسجد نہیں تھی, تو انہوں نے وہاں ٹینٹ لگا کے, اور وہاں وہ جماعت جہاں جہاں قیام کیا, تہجد پڑھ کے دعا کی, اکثر جگہ مسلے بن گئے یا مسجد بن گئے. تو یہاں وہ مان لو جماعت ٹھہری, تو وہ ملاقات کرنے کے لیے ملیشیا کے کوئی تاجر تھے, ان کے پاس گئے, بہت بڑے مالدار آدمی, ان کو جا کے ایمان کی, آخرت کی بات کی, انہوں نے وہ آ گئے, اور ان کے ساتھ پھر وہاں وقت لگایا, اللہ نے زندگی بدل دی انہوں نے. اب انہوں نے پوری زمین خرید کے اور مسجد, بڑی سی مسجد بنا دی, اور سب اور مدرسہ بھی کہا کہ اب امام بلاؤ, تو وہاں سے انڈیا سے گجرات سے امام بلایا اور مکتب قائم کیا, اور اس میں ہم لوگ ٹھہرے, اس میں تو کہا وہ جماعت ذریعہ بنی اس نے, اور اس کے بعد لوگوں نے مسجد بن جانے سے بہت سے لوگ ادھر آ کے آباد ہو گئے, وہاں پر لے کہ یہ مسجد مقصد قائم ہو گیا, اب یہی نوکری آئی اس طریقے سے. تو جماعت جیسا 24 گھنٹے اعمال کرے گی نا, اس کے اثرات پڑتے, اس کے سنت کے مطابق ہر کام کریں, خوب روئیں دھوئیں, اللہ سے معافی مانگیں, اور خوب جو ہے اپنا جو ہے نا خدمت کریں, مقامی لوگوں کو جوڑ کر کے ان سے محبت سے ملیں, ان کا احترام کریں, اور خوب جماعت پھرے, جماعت نقد جماعت نکالے, کہتے جماعت جائے تو ایک تو نقد جماعت نکالنے کی کوشش کرے, چلے کی 3 چلے کی یا کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت, ہر جماعت جماعتوں سے جماعتیں نکلیں, تو اجتماع کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, جماعتیں جماعتیں ہو جائے, اور دوسرے کی जो अपने साथी गए हैं ना उन पर मेहनत करो। हर साथी हर चीज को सीखे, खाना बनाना भी सीखे, छह नंबर बयान करना भी सीखे, तारुफ करना भी सीखे, नमाज पढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो नमाज भी सीखे, इतनी नमाज सीखने की इमामत कर सके अब से है ना, इसमें दस सूरतें सीख ले, मसाइल को सीख ले नमाज से, ऐसा साथियों पर मेहनत। और मकानी काम को जिंदा करना, हर मस्जिद में मस्जिद की जमात बने और वहां से दीन की मेहनत हो, वहां से गश्त हो, दूसरा गश्त हो, मशवरा हो, तालीम हो, घर के अंदर तालीम हो, मस्तूरात की तालीम हो। जितने मर्द हैं उससे ज्यादा औरतें हैं, जितनी औरतें हैं उससे ज्यादा बच्चे हैं, उनमें कैसे दीन आएगा, वो घर की तालीम के जरिए। तो जहां जाएं तो हम मस्जिद की जमात को मजबूत करें, नहीं बनी हो तो बनाएं, और उनको आसान अंदाज से ये मोटे मोटे काम समझें कि भाई रोज मशवरा करो, कितनों को जुड़ो, और ढाई घंटे निकालकर हर घर घर की मेहनत हो, हर फर्द की घर घर मेहनत, ताकि 100% लोग नमाजी बने। हर घर में जो है फजाइल की किताब पढ़ी जा रही है, हर घर में तिलावत की जा रही है, और जितने बालिग मर्द हैं वो सब मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ रहे हैं। इसकी कोशिश करें, इसके लिए मकामी तौर पर मस्जिदवार जमात बना करके ये पांच काम करने हैं। जितने हमारे जो जमातों में जा रहे हैं भाई, वो तो अपना जैसे बताया गया ना कि इन चीजों में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाएंगे, दावत देने में, सीखने सिखाने में, जिक्र तिलावत नमाज में, और बाकी जो चीजें बताई गई उसका लिहाज। जो वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों पर जाकर के, जो मस्जिद की जमात बनी हुई है, तो अपनी मस्जिद की जमात से जुड़ करके ये पांच काम करें, मशवरे में शरीक हो, ढाई घंटे रोजाना लगाएं,
मेरा बेटा है,
दो गश्त करें अपने एक अपने महल्ले का, एक दूसरी महल्ले में जाकर महीने में तीन दिन लगाएं, उससे देहातों में अतराफ की बस्तियों में जाएं, उससे क्या होगा कि अतराफ में दीनदारी का माहौल बने। बंजर बस्तियां जहां जहां मस्जिद नहीं है, मुसल्ला नहीं है, नमाज अजान नहीं हो रही है, वहां भी छोटी जमात लेकर के जाए, वहां जो मुसलमान भाई हैं उनसे मिले मोहब्बत से, उनको जो है ना नमाज की तरगीब दे, और इस तरीके से तो उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आप देखेंगे जो ऐसी जगहों पर अपना सहरोड़ा लगाएंगे तो उससे उनके अंदर बहुत फिक्र आएगी दीन की। बंदे बस्तियों में अपना तीन दिन 72 घंटे अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह उससे आगे की तौफीक मिलेगी, चिल्ले की तीन चिल्ले की तौफीक मिलेगी। तो वापस जाने वाले भाई नमाज का तो पढ़ रहे, देखो नमाज का तो पूरा एहतमाम करें। जब तक मुसलमान नमाज का एहतमाम करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, दूर रहता है। अब जो नमाज में सुस्ती करता है तो शैतान का हौसला बढ़ जाता है, उसको भसाने की तमा समझ जाता है। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, वापस जाने वाले भाई इसका लिहाज रखें, नमाजों की पाबंदी, तिलावत की, जिक्र की, और मस्जिद की जमात बनी हुई है तो उससे जुड़ करके ये पांच काम करें।
तो सब बहुत जरूरी बात कर रहे हैं।
और आने वाली जमातों की नुसरत करना, जमात आपके यहां बस्ती में पहुंचे तो खुश हो जाना चाहिए। जमात आए कहते हैं कि अल्लाह ताला देखो किसी जगह अजाब भेजने का इरादा फरमाते हैं, जब अमाल बिगड़ते हैं, जैसे अमाल ऊपर जाते हैं वैसे हारा करते हैं। लेकिन अगर किसी जगह कुछ लोग जो मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करें, अल्लाह के घर को आबाद करने की मेहनत करें, अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखें और रातों को उठकर इस्तिगफार करें, तो अल्लाह अपना अजाब उठा दे। तीन काम, مسجد کو آباد کرنا، اس کی محنت کرنا، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھنا، اور راتوں کو اٹھ کر استغفار کرنا، تو اللہ عذاب اٹھا لے. یہ بتایا گیا کہ دو حالتوں میں اللہ عذاب نہیں بھیجے. ایک تو فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے بیچ میں ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، اور دوسرے جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو استغفار قیامت تک باقی رہے، استغفار کرنے والے بنیں گے. تو بتایا جس بستی میں، جس جگہ میں لوگ مسجد میں، جہاں مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہو رہی ہو، آپس میں اللہ کی نسبت سے محبت کر رہے ہوں، اور راتوں کو اٹھ کر استغفار کر رہے، تو اللہ عذاب کو اٹھا لے موقوف کر دے. آپ بتاؤ کوئی جماعت جائے گی کسی بستی میں تو یہ تینوں کام کرے گی نہیں کرے گی؟ تینوں کام کرے گی. تو جماعت کا آنا رحمت ہے یا زحمت ہے؟ زحمت. یہ تو عذاب کو موقوف کرنا کرانے والی جماعت. جماعت جائے گی، خود نماز پڑھے گی، مسجد تہجد پڑھے گی، اور مسجد کو آباد کرے گی، گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لائے گی، وہ آباد کرنے کی محنت ہوگی، اور اللہ ہی کی نسبت سے وہ محبت ہوگی آپس میں، کوئی رشتے داری نہیں آپس میں. اللہ اب یہاں جتنے لوگ بےچارے لگے، سب جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں سب اللہ کی نسبت سے دیکھو کہتی جیسے آپس رشتے داروں سے زیادہ بڑھ کر محبت ہے نا، اللہ کی نسبت سے محبت. اور راتوں کو اٹھ کر جماعت جو ہے خود تہجد پڑھیں گے، بتا نہیں تہجد پڑھ کے تو عذاب چلے گا نہیں چلے گا. تو آنے والی جماعت کو خوب اس کا ہم ساتھ دیں، نصرت استقبال کریں، اس کا ساتھ دیں، نقد جماعت نکالنے کی محنت کریں جماعت کے ساتھ مل کر کے، مقامی جو ہے مسجد وار جماعت بنانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ. تو جہاں ہجرت اور نصرت یہ دونوں جمع ہوتی ہے وہاں سے دین پھیلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ہجرت کی، آپ پہلے تشریف لے گئے تائے، تو وہاں والوں نے کوئی نصرت نہیں، بلکہ بہت زیادہ بس سلوکی کا مظاہرہ کیا، پرچہ آ گیا آزاد کا، لیکن آپ نے بدعا نہیں کی. میں تو رحمت بنا تو وہاں سے دین نہیں پھیلتا ہے. حبشہ میں صحابہ گئے وہاں سے بھی جو ہے وہاں لوگ بنا تو دی. پھر جب آپ نے مدینے ہجرت کی، آپ نے صحابہ نے، تو وہاں کے لوگوں نے خوب نصرت کی، تو مدینے کی بستی کو اللہ نے قبول کر، اور وہاں سے ساری دنیا میں دیکھو ہدایت قبول پھیلا، اور قیامت تک رحمت برستی رہے ہجرت. تو جہاں بھی جو جماعتیں جو جائیں گی وہ ایک وقتی طور سے دیکھو اپنا گھر چھوڑ کے گئے، تو ہجرت کی نقل
کریں گے اللہ امت کو.
مقامی لوگ اگر اس کی نصرت کریں گے تو وہاں سے دین پھیلے گا، وہاں سے ہدایت پھیلے
گی.
تو نصرت جو ہے نا بہت بڑی چیز، نصرت اللہ کے دین کی نصرت کرنا. اللہ کی وعدہ ہے جو اللہ کی دین کی نصرت کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا. ان تنصر اللہ علیہ
نمبر
یہ سب بھی تسلام ہے.
امیر صاحب کا نام کیا ہے؟
جو اللہ کے دین کی مدد کرے
توصیف،
یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ اس کی مدد فرمائے اور اس کے اکھڑے ہوئے قدم جمع
دیں،
تو ہم دین کی نصرت کرنے والے بنے، دین کے مددگار بنے. تو جو جماعت جائے ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں، اس کی ہم نصرت کریں گے، اس کا خوب ساتھ دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ صرف پھر انشاءاللہ دین پھیلے اور ہدایت پھیلے. اور جو لوگ نصرت کریں گے ان کو بہت بڑا اجر ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا. تو جانے والی جماعتوں کی نصرت کرنا، اور خود اپنے نکلنے کی ترتیب بنانا، یہ کام جو ہے نا دیکھو اپنے لیے ہے، اپنے لیے. ایک اجتماع ہوا حضرت جی کے زمانے میں، آخری اجتماع ہوا وہاں بریل ہمارے یو پی میں، تو اس اجتماع میں ہمارے ڈاکٹر صاحب سے علی گڑھ سے بڑی محنت کی انہوں نے، انتظامی لائن سے اور طرح سے بہت بڑا رشتے، کئی گنا بڑا لاکھوں کا مجمع تھا وہ. تو وہ گئے حضرت جی کے پاس، ہمارے یہاں پروفیسر تھے نا جی, اسے کہا ہمارے حضرت جی سے دعا کرا دیجیے ہمارے یہاں. وہ حضرت جی کے پاس انہوں نے بلا دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں جی کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اجتماع میں بڑی محنت کی ہے, بڑی جانے والی قربانی. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور پھر یہ فرمایا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یوں سوچو جو کچھ کیا تم نے اپنے لیے کیا, جو کچھ کیا اپنے لیے. یہ سو وہ بہت میرے پاس آئے کہنے لگے حضرت جی نے دعا فرما دی اور میں اسے کہا ایک جملے میں میری اصلاح بھی فرما, جو کچھ کیا اپنے لیے کیا. بس میں سمجھتا تھا میں نے بڑا کارنامہ دیا لیکن حضرت جی نے ایک جملے میں میرا جو ہے میری اصلاح فرما. تو جو کچھ ہم جماعت میں جائیں گے اپنے لیے, نصرت کریں گے اپنے لیے, ہے نا, جو کچھ اگر آدمی جو کام اپنے لیے کرتا ہے تو وہ زندگی بھر کرتا ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا وہ آیت پڑھی وہ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ, جو مجاہدہ کرتا ہے اپنے ہی لیے. اس لیے جو بھائی ہمارے جا رہے ہیں جماعت میں یہ سمجھے ہم اپنے لیے جا رہے ہیں, دین سیکھنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, اللہ قرآن کرنے کے لیے. اور مقامی بھائی جو جا رہے ہیں واپس جائے, جیسے میں نے عرض کیا وہ جا کے مسجد وار جماعتوں سے دور کر کے اپنے پانچ کام کریں اور آنے والی جماعتوں کی خوب سال سے نصرت کریں, وہ بھی اپنے سمجھے جیسے اللہ کو تو ہم اپنے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
جو بات کر سکتے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوار پیارے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا, جو دین دیا ہے اللہ کو پسند فرمایا کہ ہم نے پسند کر کے تم کو دین دیا. تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو پسند کرے وہ کتنا اونچا ہوگا, وہ دین کتنا اونچا ہوگا, وہ دین کتنا افضل ہوگا. اللہ نے اس کو پسند کیا اور ہماری کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو پسند کر کے یہ دین دیا.